بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم سورہ ہود کی 110ویں سے لے کر 113ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں حسین سبز علی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیوان ہے، اور نسندیہ ہم نے موسیٰ کو توریت پردان کی، کنتو اس میں مت بھید ہو گیا और यदि काफिरों को समय देने के संबंध में आपके पालनहार की परंपरा पहले से निर्धारित न होती तो निश्चित रूप से इसी संसार में उनके बीच फैसला कर दिया जाता, और निसंदेह वे लोग गहरे संदेह में पड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से आपका पालनहार उनके कर्मों का बदला उन्हें पूर्ण रूप से प्रदान करेगा, और निसंदेह वे जो कुछ करते हैं वो उससे पूर्णतः अवगत है। तो हे पैगंबर, जैसा कि आपको आदेश दिया गया है, आप और आपके साथ ईश्वर की ओर आने वाले लोग प्रतिरोध करें और उद्दंडता न करें कि निसंदेह जो कुछ तुम लोग करते हो ईश्वर उसे देखने वाला है, और अत्याचारियों पर भरोसा न करो कि नरक की आग तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगी, और ये जान लो कि ईश्वर के अतिरिक्त तुम्हारा कोई सहायक नहीं है और किसी की ओर से तुम्हारी सहायता नहीं की जाएगी।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज सोमवार है, फरवरी की पहली, शाबान की 18 और मार्च की 21 तारीख। कार्यक्रमों में पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके बाद राजनीतिक चर्चा होगी, जिसके उपरांत नौरोज के संबंध में विशेष कार्यक्रम पेश किया जाएगा। सभा के अंत में हम आपको सुनवाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत का राज। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा। आप कुछ ही क्षणों में समाचार पेश किए जाएंगे। ये रेडियो तेहरान है। अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान सहित दुनिया के देशों में नौरोज बड़े उत्साह के साथ आज मनाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियां जारी रहेंगी। रूस ने कहा है कि उसके विरुद्ध प्रतिबंध पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। आज ईरान सहित दुनिया के कई देशों में ईद नौरोज का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बसंत नए हिजरी शमसी वर्ष का पहला दिन है। ईरान सहित कई देशों में नववर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। नौरोज ईरान में बहुत खुशी और धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। नौरोज का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई और राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने नौरोज के अवसर पर बधाई दी है। ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि हम किसी भी स्थिति में शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों को रोकेंगे नहीं। मोहम्मद इस्लामी ने नववर्ष के अवसर पर अपने बधाई संदेश में कहा है कि शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियां जारी रहेंगी। उन्होंने लिखा कि शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों को जारी रखने के उद्देश्य से कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने इस क्षेत्र में परमाणु वैज्ञानिकों के सहयोग के संदर्भ में कहा कि वर्चस्ववादियों के अथक प्रयासों के बावजूद ईश्वर की कृपा से परमाणु वैज्ञानिकों के सहयोग के कारण देश का परमाणु उद्योग गतिशील है। उन्होंने कहा कि इस बारे में परमाणु वैज्ञानिक और उनके परिवार के सदस्य जो बलिदान दे रहे हैं वे सराहनीय हैं। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता का कहना है कि देश के विरुद्ध पश्चिम के प्रतिबंध न केवल रूस को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। स्पुतनिक के अनुसार रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने सोमवार को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर यूरोप की ओर से रूस पर संभावित तेल के प्रतिबंधों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बहुत ही जटिल है। इसका कारण यह है कि ये प्रतिबंध तेल की अंतर्राष्ट्रीय मंडियों को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। रूस के अनुसार पश्चिम के प्रतिबंधों से यूरोप में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी बीच रॉयटर्स ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी के हवाले से रिपोर्ट दी है कि यूरोपीय संघ की आज की बैठक में रूस के विरुद्ध तेल के बारे में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस के साथ वार्ता की विफलता की स्थिति में तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो सकता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वार्ता का विफल होना तीसरे विश्व युद्ध के आरंभ होने जैसा है। मॉस्को की ओर से मारियुपोल के लोगों से हथियार डालने की वार्निंग के बीच यूक्रेन के रूस के सामने घुटने टेकने से इनकार करने के बाद रूस ने ये चेतावनी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने विश्व को पुनः याद दिलाया है कि रूस के साथ होने वाली वार्ता यदि विफल हो जाती है तो फिर पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर संकट पैदा हो सकता है। उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो सकता है। CNN से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी वार्ता के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की का ये मानना है कि वार्ता को युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र उचित मार्ग ही समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि वार्ता के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। दक्षिण कोरिया ने कतर से 20 वर्षों का गैस का एक समझौता किया है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने कतर के अपने समकक्ष के साथ प्राकृतिक गैस के बारे में चर्चा की है। किम बू क्यूम ने खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आले सानी के साथ ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य के विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण दक्षिणी कोरिया ईंधन की आपूर्ति के रुक जाने को लेकर बहुत अधिक चिंतित है। यही कारण है कि कतर और दक्षिणी कोरिया के बीच प्राकृतिक गैस को लेकर 20 वर्षीय एक समझौता हुआ है। इस समझौते के आधार पर दक्षिणी कोरिया की तेल कंपनी प्रतिवर्ष कतर से 2 मिलियन टन प्राकृतिक गैस का आयात करेगी। ये काम कतर की कंपनी कतर पेट्रोलियम के माध्यम से किया जाएगा। कतर दक्षिणी कोरिया की प्राकृतिक गैस की जरूरत के 25% भाग की आपूर्ति करता है। चीन में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। सोमवार को चीन के गुमवाशी में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया। चीन का बोइंग 737 सोमवार दोपहर को हादसे का शिकार हो गया जिस पर 132 लोग सवार थे। बताया ही जा रहा है कि यह विमान स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे कुनमिंग हवाई अड्डे से उड़ा था। इस विमान को दोपहर 3 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचना था। उड़ान भरने के 71 मिनट के बाद यह विमान हादसे का शिकार हुआ। यह विमान एक पहाड़ी पर क्रैश हुआ जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में आग लग गई। इस विमान दुर्घटना से होने वाली क्षति के बारे में विस्तार से अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बावजूद अमरीका ने सऊदी अरब को मिसाइल रोधी पैट्रियट प्रणाली भेजी है। जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद से अमरीका और सऊदी अरब के संबंधों में कुछ तनाव देखा जा रहा था। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडेन सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मिलने से भी इनकार कर चुके हैं। इन सब बातों के बावजूद एक अमरीकी अधिकारी ने बताया है कि वाशिंगटन की ओर से रियाज को एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर भेजे गए हैं। एक अमरीकी अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अमरीका क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। यमन युद्ध में बुरी तरह से फंस चुके सऊदी अरब ने युद्ध की दलदल से निकलने के उद्देश्य से अमरीका से मिसाइल रोधी पैट्रियट प्रणाली की मांग की थी। सऊदी अरब की इस मांग को अमरीका ने स्वीकार करते हुए उसकी सहायता की है। हालिया युद्ध में यमन द्वारा सऊदी अरब के कई संवेदनशील प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा चुका है। अमरीका ने अब यह बात स्वीकार की है कि म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय का जनसंहार किया गया। फ्रांस प्रेस के अनुसार अमरीका के अधिकारी ने बताया है कि वाशिंगटन का मानना है कि म्यांमार के सत्ताधारी सेना ने रोहिंग्या अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया। हालांकि अमरीका की ओर से यह स्वीकारोक्ति अब आई है कि म्यांमार में वहां के रोहिंग्या मुसलमानों का जंग संहार किया गया, किंतु इस बात को बहुत पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध अमानवीय एवं हिंसक कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। म्यांमार की सेना इस देश के रोहिंग्या मुसलमानों का दमन करने के बाद अब इस देश में उन लोगों के विरुद्ध मैदान में उतर आई है जो उसका विरोध करते हैं। कोविड महामारी में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हांगकांग ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत सहित उच्च जोखिम वाले 8 देशों से उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोविड-19 के मामलों में धीरे धीरे हो रही कमी के बाद अब हांगकांग की नेता ने सोमवार को जानकारी दी है कि वे अमेरिका और ब्रिटेन सहित 9 देशों से अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू करने जा रहे हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे इस्लामी क्रांति के नेता अयतुल्लाह अल-उज़्मा खामेनेई के महत्वपूर्ण नवरोज संदेश की। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम एक नज़र डालेंगे भारत नियंत्रित कश्मीर में मनाए गए नवरोज पर और वहाँ के हालात पर।
पहली बार हमें यहाँ ट्यूलिप गार्डन में आने का मौका मिला।
यूक्रेन संकट के चलते यूरोप ईंधन के संकट से जूझ रहा है। लंदन से एक रिपोर्ट हम इस विषय पर सुनवाएंगे। तो राजनीतिक चर्चा के विषय यही है। आरम्भ करते हैं नवरोज के संदेश से। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता अयतुल्लाह अल-उज़्मा खामेनेई ने नए हिजरी शमसी साल के आगमन पर जनता के नाम अपने संदेश में महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया। जायजा ले रहे हैं रविश जैदी।
ईरान में प्रचलित हिजरी शमसी कैलेंडर का साल 1400 पूरा हुआ और 21 मार्च 2022 से इस कैलेंडर का नया साल 1401 शुरू हो गया। कई साल से जारी परंपरा के अनुसार इस बार भी साल की समाप्ति और नए साल की शुरुआत पर इस्लामी क्रांति के लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने जनता के नाम संदेश जारी किया। अपने वीडियो संदेश में आयतुल्लाह खामेनेई ने बीते साल की कड़वी और मधुर घटनाओं का जायजा लेते हुए नए साल के लिए बुनियादी गतिविधियों की दिशा निर्धारित की। आयतुल्लाह खामेनेई ने अपने संदेश में पहले मधुर घटनाओं का जिक्र करते हुए चुनावों के बारे में बात की। ये राष्ट्रपति चुनाव थे जिनके नतीजे में राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की सरकार बनी, जो कोरोना महामारी के चलते प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बड़ी तन्मयता से जनता की सेवा कर रही है। ईरान को कोरोना की महामारी के साथ ही अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों के अमानवीय दबाव का भी सामना है। पश्चिम देश ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के हालात इतने खराब हो जाएं कि देश की जनता इस्लामी शासन के खिलाफ बगावत कर दे। इस लक्ष्य के लिए ये देश ईरान को दवाओं से वंचित रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह की अमानवीय नीतियों का सामना करते हुए ईरान प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। ईरान की जनता ने अपने प्रतिरोध का लोहा सारी दुनिया से मनवाया है और इस प्रतिरोध की सराहना सुप्रीम लीडर ने अपने संदेश में भी की, जबकि इससे पहले भी वे कई बार ईरानी राष्ट्र के प्रतिरोध की प्रशंसा कर चुके हैं। नौरोज के संदेश में सुप्रीम लीडर ने कहा कि सन 1400 की एक मधुर घटना ये थी कि अमरीकियों ने हाल ही में इकरार किया कि हमें ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति में शर्मनाक शिकस्त हुई। ईरानी कौम को फतह मिली, कोई भी व्यक्ति अकेले इसका श्रेय नहीं ले सकता। पूरी ईरानी कौम के प्रतिरोध के नतीजे में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये साबित हो गया कि साम्राज्यवाद के मुकाबले में ईरानी कौम जिस रास्ते पर चल रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लामी क्रांति के नेता के संदेश में कुछ अन्य उपलब्धियों का भी जिक्र था। उन्होंने कहा कि एक और विषय कोरोना की महामारी का गंभीरता से मुकाबला था। वाकई सही अर्थों में संघर्ष हुआ, मुकाबला किया गया। इस खतरनाक बीमारी से होने वाली मौतें रोजाना कई सौ की दर से घटकर एक जमाने में तो 20 तक और 18 तक पहुंच गई। ईरान ने कोरोना वायरस की महामारी का सफलता के साथ मुकाबला किया और इसके लिए सरकार और आर्म्ड फोर्सेस और चिकित्सा विभाग के साथ ही बड़ी संख्या में स्वयंसेवियों ने भूमिका निभाई। इस आपदा के समय पूरा देश एकजुट नजर आया और सब ने एक परिवार के सदस्यों के रूप में काम किया। आयतुल्लाह खामनाई के संदेश के अनुसार बीते साल के कड़वे अनुभवों में जनता की आर्थिक तंगी थी, जिसे दूर किया जाना जरूरी है। आर्थिक क्षेत्र में मूलचूल सुधार लाने के लिए सुप्रीम लीडर कई साल से बड़ी तन्मयता से काम कर रहे हैं और हर साल के लिए नारा और बुनियादी लक्ष्य निर्धारित करते समय वे आर्थिक विषय को केंद्र में रखते हैं। ईरान की कोशिश ये है कि देश की अर्थव्यवस्था की तेल की आमदनी पर निर्भरता कम हो और सरकारें रेवेन्यू के लिए विविध स्रोत विकसित करें। देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादें और स्तंभ इतने मजबूत हों कि बाहरी पाबंदियों से वो संकट में न पड़े। सुप्रीम लीडर ने इसी लक्ष्य के तहत प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था का विचार पेश किया, जो आर्थिक विशेषज्ञों की लंबी बहसों और अध्ययन के बाद निर्धारित किया जाने वाला मजबूत मॉडल है। ईरान इसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसी संदर्भ में इस्लामी क्रांति के नेता ने इस साल के लिए नया नारा चुना है, रोजगार पैदा करने वाला नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन।
भारत नियंत्रित कश्मीर में भी नौरोज मनाया गया और इस अवसर पर विशेष समारोहों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पर्यटक भी कश्मीर पहुंचे हुए थे। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर में आज नौरोज बड़ी ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर और घाटी के अन्य कस्बेजात में इस हवाले से विभिन्न समारोह हुए और जिसमें लोगों की एक अच्छी खासी संख्या ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि मीर सईद अली शाह हमदानी के कश्मीर आने के बाद यहाँ पर सदियों से ये रीत चली है कि नवरोज को एक समारोह के तौर मनाया जाता है और बड़े उत्सव के साथ लोग इन समारोहों में भाग लेते हैं। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि श्रीनगर में बागी गुललाला, जो एशिया का सबसे बड़ा बाग माना जाता है, को नवरोज के ही दिन खोला जाता है, जबकि शजरकारी के हवाले से प्रशासन का मानना है कि आज ही के दिवस वो शजरकारी भी आरंभ करते हैं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन को जब खोला गया तो सयाहों की एक बड़ी भीड़ उमड़ आई, जिनमें उत्साह देखा गया। इस अवसर पर उन्होंने रेडियो तेहरान से वार्ता करते हुए कहा,
पहली बार हमें यहाँ ट्यूलिप गार्डन में आने का मौका मिला और कश्मीर की ब्यूटी को विटनेस करने का एक चांस मिला। जब फ्लावर्स अपनी पूरी ब्लूम पर हैं, बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं इस वैली के अंदर।
एक पर्यटक ने कहा कि वो हॉलैंड के गुललाला भी गए थे, परंतु जो कश्मीर के गुललाला को देखने में मजा है वो कहीं और नहीं है।
और मेरे हिसाब से जैसा नीदरलैंड में ट्यूलिप गार्डन है, उससे भी बहुत अच्छा हम कश्मीर को बना सकते हैं। तो यही मेरा का यहाँ पे के आने का मकसद है और मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से यहाँ आए।
यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि कश्मीर में ये रीत रही है कि नवरोज के दिन अच्छे खासे पकवान पकाए जाते हैं, जिनकी नज़ीर विश्व में मिलना मुश्किल है। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
यूक्रेन संकट के चलते यूरोप में ईंधन का संकट पैदा हो गया है। ब्रिटेन में ईंधन की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। लंदन से मुश्तबा कासिम जादे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कायम रिज़वी।
ईंधन उन चीजों में है जिनकी कीमतों पर यूक्रेन संकट का फौरन असर पड़ा है। ब्रिटेन में ईंधन की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। स्थानीय युवा का कहना है कि कीमत कभी इतनी नहीं बढ़ी थी। ईंधन की बढ़ी कीमतों का कुछ लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कुछ लोग तो अपना खर्च भी नहीं चला पा रहे हैं। कुछ महीने पहले ब्रिटेन में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई थीं। सरकार ने ईंधन की राशनिंग और कीमतों में वृद्धि कर दी, जिससे समस्या किसी हद तक हल हुई और सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा, क्योंकि ब्रिटेन में तेल की कीमतों का 50% सरकारी टैक्स होता है। ईंधन पर टैक्स से हर साल सरकार को लगभग 28 अरब पाउंड की रकम हासिल हो जाती है। ये बड़ी रकम है। अगर गाड़ी का पहिया चलता है तो ब्रिटेन की सरकार की आमदनी होती है। सरकार ने ईंधन के टैक्स के साथ ही दूसरे अनेक टैक्स लगा रखे हैं। ड्राइवरों की यूनियन ने कहा है कि ब्रिटेन के इतिहास में ईंधन की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे सरकार की आमदनी भी बढ़ गई है। अब सरकार को चाहिए कि वो ईंधन पर टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी में कुछ कमी करे। हालांकि बढ़ोतरी से पहले भी ईंधन की कीमतें जनता को परेशान कर रही थीं। गैस, बिजली, टैक्स, इन सारी चीजों की कीमतों में वृद्धि से लोगों को भारी दबाव झेलना पड़ा। इन हालात में भी सरकार हर लीटर पर 50% टैक्स वसूल कर रही है। ये हास्यास्पद है। ब्रिटेन में तेल की कीमतों में वृद्धि के चलते इस देश में ईंधन की चोरी पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना बढ़ गई। रिपोर्ट बताती है कि यही हालात जारी रहे तो साल में ईंधन की चोरी 20 करोड़ पाउंड तक पहुंच सकती है। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अब नवरोज के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत है, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का अंतिम कार्यक्रम सेहत का राज।
दोस्तों, ईद नवरोज के शुभ अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई प्रस्तुत करते हैं। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नया ईरानी साल आरंभ हो चुका है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। जिधर देखिए हरियाली ही हरियाली है। प्रकृति इस बात का संदेश दे रही है कि कोरोना वायरस का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हम लोगों को शांति प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लोगों के मन मस्तिष्क खुशियों से भरे हैं। लोग घूमने फिरने, अपने सगे संबंधियों और मित्रों आदि से मुलाकात का कार्यक्रम बना चुके हैं। आज फरवरी महीने की पहली तारीख है। बहुत से लोग मिलने मिलाने और देखने दिखाने के लिए अपने अपने घरों से जा चुके हैं। कुछ लोग नौरोज की छुट्टियां बिताने के लिए दूसरे देशों की यात्रा पर जाते हैं, परंतु 2 वर्षों से अधिक समय से उतार चढ़ाव के साथ कोरोना महामारी का कहर जारी है, जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी का शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसे कोरोना ने प्रभावित नहीं किया हो। इस आधार पर कोरोना ने नौरोज के कार्यक्रम को भी प्रभावित कर रखा है।
दोस्तों, जब नया वर्ष आरंभ होता है तो ये मशहूर दवा पढ़ी जाती है।
या मुकल्लिबल कुलूब वल अबसार, या मुदब्बिरल लैल वन नहार, या मुहव्विलल हौल वल अहवाल, حول حالنا الى احسن الحال.
हे दिलों को परिवर्तित कर देने वाले, हे रात और दिन को चलाने वाले, हे साल और हाल को बदलने वाले, और हमारे हाल को बेहतरीन हाल में बदल दे. ये वो वाक्य हैं जो दिलों से निराशा को मिटाकर आशा के दीप जलाते हैं. ये वो वाक्य हैं जो अंतरात्मा को मजबूत बनाते हैं. महान व सर्वसमर्थ ईश्वर पर इंसान के ईमान को मजबूत बनाते हैं. ये वो वाक्य हैं जो इंसान में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, और सकारात्मक ऊर्जा ही इंसान के अंदर समस्याओं से लड़ने और उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है.
नौरोज आने से पहले बहुत से लोग नौरोज के स्वागत के लिए लगभग एक महीने पहले से खरीदारी आरंभ कर देते हैं. यही नहीं, खरीदारी के साथ साथ लोग अपने घरों की सफाई सुथराई भी शुरू कर देते हैं. ईद नौरोज में लोग नए वस्त्र धारण करते हैं, बड़े बूढ़े छोटे बच्चों को ईदी भी देते हैं, परंतु लोग नया वर्ष आरंभ होने की बहुत प्रतीक्षा करते हैं. उस समय एक दस्तरखान बिछाया जाता है, उस पर बहुत सारी चीजें रखी जाती है. उस दस्तरखान को सुफरे हफसिन कहा जाता है. उसकी वजह यह है कि उस दस्तरखान पर सात चीजें जरूर रखी जाती है, जिनके नाम का पहला अक्षर सीन से शुरू होता है, जैसे सेब.
नया साल आरंभ होने से पहले बहुत से लोग गेहूं और लोबिया जैसी चीजों को कई दिन पहले से पानी में भिगाते हैं, ताकि उन्हें हफ्सीन दस्तरखान पर रखा जा सके. सब्जा भी यानी हरियाली सुफरे हफ्सीन पर रखी जाने वाली चीज है. दूसरे शब्दों में, हरियाली के बिना हफ्सीन दस्तरखान की कल्पना भी नहीं की जा सकती. सुफरे हफ्सीन पर पवित्र कुरान भी रखा जाता है. वास्तव में पवित्र कुरान सुफरे हफ्सीन की जान होता है. जिस तरह हरियाली के बिना सुफरे हफ्सीन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह पवित्र कुरान के बिना सुफरे हफ्सीन की कल्पना नहीं की जा सकती. सुफरे हफ्सीन पर अंडे भी रखे जाते हैं. छोटी सुंदर लाल मछलियां भी सुफरे हफ्सीन की शोभा बनती हैं.
लोग नया साल बदलने की प्रतीक्षा करते हैं. इस मौके पर बहुत से लोग सुफरे हफ्सीन के पास होते हैं, अपने और दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं. यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है. नौरोज के दिनों में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है कि जिसका चित्रण शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता.
नौरोज वो त्योहार व पर्व है जो बहार के लिए सुंदर और नए वस्त्र की भांति है, और ये वस्त्र वो है जिसके साथ ईरानी पले बढ़े हैं, परवान चढ़े हैं, और उनका मानना है कि ये जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, खुशी व स्फूर्ति भरने वाली सुंदर ईरानी परंपरा है. इस सुंदर ईरानी परंपरा की सुंदर व आकर्षक विशेषताएं हैं जिन्होंने हजारों साल से इसे बाकी रखा है. कभी भी ये सुनने को नहीं मिलता है कि नौरोज का प्रभाव ईरानियों के जीवन में कम हो रहा है. नवरोज वो राष्ट्रीय पर्व है जो समस्त ईरानियों के अस्तित्व में रच बस गया है, मानो ये उनके अस्तित्व का अभिन्न भाग है.
तमाम ईरानी नौरोज को जश्न मनाते हैं, चाहे उनका संबंध किसी भी जाति व धर्म से हो. बच्चों के लिए नौरोज का एक अलग ही महत्व है. शायद बचपन की यादें हैं जिसने नौरोज को हजारों साल से जिंदा रखा है और उसे बेहतरीन राष्ट्रीय पर्व में परिवर्तित कर रखा है. प्रतिवर्ष जब भी नौरोज निकट आता है, लोगों के दिलों की हालत अजीब होने लगती है. दिलों में खुशी, उमंग और आशा भरने लगती है.
नौरोज ऐसा पर्व नहीं है जो केवल ईरान में मनाया जाता है, बल्कि नौरोज दुनिया के बहुत से देशों में मनाया जाता है. ताजिकिस्तान, आजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा भी बहुत से देशों में नौरोज मनाया जाता है. दोस्तों, इन खुशी के दिनों में हम आप सब के लिए मंगलमय वर्ष की कामना करते हैं, चाहे आप दुनिया के जिस क्षेत्र व देश में रह रहे हैं. विशेषकर अगर आप उन देशों में रह रहे हैं जहां नवरोज मनाया जाता है, आशा करते और महान ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपके जीवन में खुशी हरियाली हो और आपका पूरा जीवन ही बाहरी हो।
नौरोज में बसंत ऋतु की शुद्ध स्वच्छ और निर्मल हवा चल रही है। बाहर ने आकर पेड़ों को नींद से जगा दिया है। पेड़ों में नई नई कोपलें लग चुकी हैं और बहुत से पेड़ों से नई नई कोपलें निकल रही हैं। बाहर में परिंदों के चहचहाने की मधुर आवाज सुनकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे भी अपने जीवन में बाहर और खुशी का आभास कर रहे हैं। हर खुशी का स्रोत महान व सर्व समर्थ ईश्वर है। महान ईश्वर ने ही हवाएं चला रखी है। यह हवाएं ही हैं जिनके कारण हम जिंदा हैं। यह हवाएं हैं जो बादलों को उड़ाकर इधर से उधर ले जाती हैं। जहां जरूरत होती है वहां वर्षा होती है और मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। मुर्दा जमीन के दोबारा जिंदा हो जाने, पेड़ों और वनस्पतियों के दोबारा हरा भरा हो जाने को देखकर इस बात को समझा जा सकता है कि प्रलय के दिन भी महान व सर्व समर्थ ईश्वर समस्त लोगों को इसी प्रकार जिंदा करेगा। प्रलय का दिन वह दिन होगा जब केवल समस्त इंसानों के अमल का हिसाब किताब होगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज अमल है हिसाब नहीं और कल हिसाब होगा अमल नहीं। तो इंसान को प्रलय के दिन की सोच में रहना चाहिए।
महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि जिस तरह हम मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं उसी तरह प्रलय के दिन समस्त लोगों को जिंदा करेंगे। कितने खुशनसीब वे लोग होंगे जिनके आमाल यानी उनके कर्म पत्र उनके दाहिने हाथ में दिए जाएंगे और कितने बदनसीब वे लोग होंगे जिनके नामा आमाल उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे।
वसंत ऋतु जहां हरियाली व खुशियां लिए हुए है, वहीं वह ईश्वर की ओर से मार्गदर्शन करने वाली भी है। इंसान को विकास और आगे बढ़ने का संदेश देती है। जो इंसान बेखबरी की नींद में है, उन्हें यह वसंत ऋतु जाग जाने का संदेश देती है। यह वसंत जहां हरियाली और प्रकृति की सुंदरता की सूचना दे रही है, वही यह बता रही है कि जिधर देखो महान ईश्वर की सुंदरता के जलवे बिखरे हैं और समस्त सुंदरता का स्रोत महान ईश्वर है।
नवरोज खुशी का पर्व है और खुशी जीवन की ऐसी जरूरत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। खुश होना और दूसरों को खुश करना इबादत है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि जिसने एक मोमिन को खुश किया उसने मुझे खुश किया और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया। इस हदीस की रोशनी में बहुत अच्छी तरह इस बात को समझा जा सकता है कि दूसरे को खुश करने का महत्व कितना अधिक है। इस्लाम में जितनी सिफारिश खुद को खुश करने व रखने की गई है उससे कहीं ज्यादा दूसरों को खुश करने की सिफारिश की गई है। दूसरों को खुश करके इंसान को जो खुशी मिलती है वो खुशी इंसान खुद को खुश करके हासिल नहीं कर सकता।
जो इंसान हमेशा खुश रहता है उसके व्यवहार का दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रसन्नचित रहने वाले इंसान के दूसरों के साथ सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं। इंसान और समाज की प्रगति शांति और खुशी में निहित है। जो इंसान खुश व विनम्र होता है उससे दूसरे लोग लेन देन आसानी से करते हैं। यही नहीं, खुश रहने वाले इंसान के साथ दूसरे लोगों के संबंध मजबूत व प्रगाढ़ होते हैं और सामान्य लोगों के साथ संबंधों की अपेक्षा उनके साथ संबंध अधिक टिकाऊ होते हैं।
ईरान के मशहूर बुद्धिजीवी और धर्मगुरु उस्ताद शहीद मुर्तजा मुतहरी कहते हैं, इंसान प्राकृतिक व स्वाभाविक रूप से खुशी, मुक्ति व कल्याण चाहता है। इंसान की धार्मिक आस्थाएं उसे आराम व संतोष प्रदान करती हैं। इसी प्रकार ये धार्मिक आस्थाएं चिंता, परेशानी और व्याकुलता को इंसान से दूर करके उसे शांति प्रदान करती हैं। इस्लामी रवायत में भी नवरोज का विशेष स्थान है। पैगम्बर इस्लाम के पौत्र हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरवरदीन महीने के आरंभिक दिनों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए थे और दुआ मांगने और ज्ञान अर्जित करने के लिए वो मुबारक दिन है। इस दिन को खुद को पाक व साफ रखो, अच्छा वस्त्र धारण करो और उसे सुगंधित करो और ईश्वर का शुक्र अदा करो।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
सेहत का राज।
दोस्तों, कार्यक्रम सेहत का राज के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है। आज के कार्यक्रम में हम एक बार फिर कुछ फलों और सब्जियों की विशेषताओं को जानेंगे। मरियम मेरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, सन 2021 को विश्व खाद्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय फल और साग सब्जियों के वर्ष के रूप में घोषित किया। ईरान की जमीन में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। वो दुनिया में फलों और सब्जियों के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध देश के रूप में पहचाना जाता है। इसी सिलसिले में हमने एक अन्य कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की है, जिसकी दूसरी कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फलों और सब्जियों की अपनी अलग ही विशेषता होती है, और अगर आप अपने खाने में फलों और सब्जियों को जगह देते हैं तो ये आगे चलकर आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आज के कार्यक्रम में हम आपको एक फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका फारसी नाम बे, अरबी में उसे सफरचल और अंग्रेजी में बालोगा किडोनिया या क्विंस बी कहा जाता है। भारत में कई स्थानों पर इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है, जबकि कई अन्य जगहों पर इसे फारसी के नाम में थोड़े परिवर्तन के साथ बीही के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों, बेही नाशपाती के परिवार का एक छोटा पेड़ या झाड़ी में उगने वाला फल है। ये फल यूरोप, भूमध्य सागर, उत्तरी अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। उत्तरी ईरान, काकेशिया, दक्षिणी पूर्वी सऊदी अरब में ये फल जंगली और खुद ब खुद उगता है। اسی لیے اس پھل کو ایران، ترکی اور سمبھوتہ گریس تتھا کریمیا پرایا دیپ کے مول نواسی کے روپ میں پہچانا جاتا ہے۔ بیہی میں ایک عجیب پرکار کی سگندھ ہوتی ہے اور کچی اوستھا میں یہ کسیلے مزے کا ہوتا ہے، لیکن باہر سے اس کی بناوٹ مضبوط نظر آتی ہے۔ اس کا سواد کسیلا ہوتا ہے، پکنے پر یہ گلابی رنگ کا ہو جاتا ہے جسے جیلی اتیادی بنانے کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے۔
دوستو، فارس، اصفہان، کرمان اور اردبیل پرانتوں میں ایران میں سب سے زیادہ پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے، لیکن اصفہان میں پیدا ہونے والے پھلوں میں خاص خوشبو اور گنوتا ہوتی ہے، جبکہ یہاں پیدا ہونے والے پھل کچھ پڑوسی دیشوں میں بھی نریات کیے جاتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے پھل زیادہ تر فصلی پھل ہوتے ہیں جو پتھ جھڑ کے موسم میں ٹھنڈ کے موسم تک پیدا ہوتے ہیں۔
بیہی کی انیک پرجاتیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ایران میں کیول دو طرح کی پرجاتیوں کی پہچان ہی ہو سکی ہے۔ پہلی طرح کی پرجاتی خوشبودار، انڈاکار اور اس کا نچلا حصہ شنکواکار ہوتا ہے، جس کا چھلکا نرم پیلا اور اس کا گودا سفید ہوتا ہے۔ اس کو کھانے، جیم اور کاڑھا بنانے میں پریوگ کیا جاتا ہے۔
دوسری قسم اناناس کی طرح ہوتی ہے اور یہ ناشپاتی کی شکل کی ہوتی ہے، اور جب یہ پک جاتا ہے تو اس کا چھلکا پیلا ہو جاتا ہے اور اس کا گودا بھی پیلا ہو جاتا ہے، جبکہ اس میں تھوڑا سواد اناناس جیسے ہوتا ہے۔ پھلوں کو عام طور پر پوری طرح سے پکنے کے لیے پیڑ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گرم جلوایو میں یہ کھانے یوگیہ ہونے تک نرم ہو سکتا ہے، لیکن ٹھنڈے موسم میں اترکت پکانے کی آوشکتا ہو سکتی ہے۔
اس پھل کے بیجوں کو بیہی دانہ کہتے ہیں۔ بیجوں کو جل میں بھگونے سے یہ پھول کر لعابدار ہو جاتے ہیں۔ بیہی پھل میں وٹامن سی، جستہ، لوہا، تانبا، پوٹیشیم اور فائبر سہت بہت سے پوشن تتو پائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پھل کا اوشدھیے پریوگ کیا ہے اور اس کو کیسے پریوگ کرنا چاہیے۔
نیتر روگ کے لیے بیہی دانے کو پیس کر نیتر کے باہر چاروں طرف لگانے سے آنکھوں کے نیچے پیدا ہونے والے کالے دھبے ختم ہوتے ہیں۔ بیہی کے بیجوں و پھل کا پیسٹ بنا کر اسے پانی میں ملا کر گرارا کرنے سے گلا بیٹھنے یا بلغم کو کاٹنے میں مدد ملتی ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے بیہی دانے کو پانی میں ڈالنے سے پراپت لعاب سے گرارا کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔
اس کا لعاب گلے کی خراش اور گرمی سے ہونے والی سوکھی کھانسی کے لیے اتینت لابھ دایک ہوتا ہے۔ بیہی دانے اماشے میں گرمی نہیں ہونے دیتے، یہ ٹھنڈ لگ کر بخار آنے، جلن، منہ کے سوکھنے اور پیاس کو بھی روکتا ہے۔ منہ سے نکلنے والے خون کو روکنے میں بھی اس کا پریوگ کیا جاتا ہے۔ گرمی کی بیماریوں میں یہ بہت ہی لابھکاری پھل ہوتا ہے۔
بیہی دانے کو پانی میں ایک گھنٹے تک بھگو دے، اس کے بعد اس کو اسی پانی سے مسل کر چھان لے۔ اس پانی میں چینی ملا کر صبح شام سیون کرنے سے بار بار گلا سوکھنا بند ہو جاتا ہے۔ بیہی دانے یعنی بیہی کی بیجوں کو گرم پانی میں ڈال کر رکھ دیں اور اس سے بننے والے لعاب کو صبح شام کھائیں۔ یہ چیز دربلتا کو کم کر دیتی ہے۔ بیہی دانے منہ میں رکھ کر دن میں 2 سے 3 بار چوسنے سے منہ میں بار بار پانی آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا ادھک ماترا میں اپیوگ اماشے کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے، اسی لیے سونف اور چینی کے ساتھ اس کو پریوگ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سونف اور چینی کے ساتھ پریوگ کی وجہ سے اس کے گن سرکشت رہتے ہیں اور اس کے نقصان دور ہوتے ہیں۔
بیہی کی خوراک 1 تولہ سے 3 تولہ تک بتائی گئی ہے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ یہ طاقت اور پرفلتا پردان کرتا ہے۔ اماشے، یکرت، دل اور دماغ کو یہ شکتی دیتا ہے۔ اس سے قبض بھی ہو سکتا ہے اور مثانے تتھا یکرت کی گرمی کو دور کرنے میں یہ لابھدایک ہوتا ہے۔ دل کی کمزوری اور پیلے دست آنے پر بھی اس کا اپیوگ بہت لابھدایک بتایا گیا ہے۔
بیہی سے مربع اور پیسٹ بنایا جاتا ہے اور اس کا شربت بھی تیار ہوتا ہے، اور جو الٹی اور دل کی انیک بیماریوں میں لابھدایک ہوتا ہے۔ سوکھی کھانسی میں بیہی کا پریوگ بہت ہی لابھدایک ہے۔ یہ پھل آماشے کو گرم رکھنے یا اس میں بھاپ پیدا کرنے میں بہت لابھدایک ہوتا ہے۔ بیہی کا مربع دل کی کمزوری اور سینے کے درد کے لیے بہت لابھدایک ہے۔ اس کا شربت دل اور آماشے کو شکتی پردان کرتا ہے۔ بیہی کا پھل کھانے سے بھوک لگتی ہے اور یہ الٹی آنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ پھل گردوں، جگر اور تلی کے مریضوں میں بہت ادھک لابھدایک ثابت ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ پریوگ پیٹ درد کا کارن بھی بن سکتا ہے۔
دوستو، بہی کو سنہرا سیب کہا جاتا ہے۔ اتیت سے لے کر آج تک اس کا اپیوگ اوساد، پیٹ کے السر اور ہردے روگ جیسی کئی بیماریوں کے علاج کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ اس پھل میں کیلوری کم لیکن بڑی ماترا میں فائبر پایا جاتا ہے۔ 100 گرام کچے پھل میں کیول 57 کیلوری ہوتی ہے۔ اس پھل میں وسا یا چربی، سوڈیم اور کولیسٹرول کی ماترا کم پائی جاتی ہے۔ یہ سبھی گن وزن گھٹانے اور شریر کو ویاپک روپ سے سوستھ بنائے رکھنے میں اپیوگی سدھ ہوتے ہیں۔ یہ پھل شریر کو سڈول بنانے کا ایک ادبھت وکلپ بھی سمجھا جاتا ہے۔
بیہی پھل وٹامن سی کا ایک سمردھ سروت ہے، جو شریر کو پرتی دن آوشکتا کی 25% وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ وٹامن سی ہمارے شریر کو سوستھ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامن سی کے سیون سے شریر کو کئی فائدے ملتے ہیں۔ روگ پرتیرودک کھمتا کو مضبوط بنانے کے لیے وٹامن سی اہم ہے۔ وٹامن سی اینٹی ایجنگ اور اینٹی انفلیمنٹری گنوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس میں بھرپور اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ وٹامن سی کے سیون سے ہمارا شریر کسی بھی طرح کے سنکرمن سے لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔
بیہی کے تیل سے بھی اپچار کیا جاتا ہے۔ اسے تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بیہی کو بھگونا پڑتا ہے اور پھر اس میں زیتون کا تیل ملا دیا جاتا ہے۔ اس مشرن کو خوب پکایا جاتا ہے تاکہ پانی جل جائے اور تیل باقی رہ جائے۔ اس مشرن کو بیہی کے تیل کے روپ میں رکھا جاتا ہے۔ بیہی کے تیل کے پریوگ سے پرانا دست، خونی کھانسی، ہیپیٹائٹس، گیسٹرک اور آنتوں کے السر کا علاج کیا جاتا ہے۔ بیہی کے تیل کا باہری پریوگ بھی ہوتا ہے۔ شریر پر تیل ملنے سے چرم روگ اور منہ کے چھالے پڑنے یا چلنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ بیہی کے تیل سے مالش کرنے سے اتیادھک پسینے کی روک تھام ہوتی ہے۔ چہرے کی توچا کی سوچھتا اور جھریوں کی روک تھام کے لیے بیہی کے پھل کے چھلکوں کو 15 دنوں تک پانی میں تھوڑی ماترا میں الکوہل کے ساتھ بھگو کر رکھ دیا جاتا ہے اور 15 دنوں کے بعد اسے لوشن کے روپ میں استعمال کرتے ہیں۔
دل کو مضبوط کرنے والے بہت سے پھلوں اور جڑی بوٹیوں کا الیکھ اسلامی چکتسا اور آیوروید میں ملتا ہے۔ بیہی بھی ایسا ہی پھل ہے جو آڑو اور سیب سے ملتا جلتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیہی کھانے والی مہیلائیں سندر بچے کو جنم دیتی ہیں، جبکہ پرشوں میں 40 لوگوں کے برابر شکتی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ایک ساتھ کئی پرکار کے وٹامن یا کھنیج پائے جاتے ہیں۔ بیہی کا مربع اس بارے میں بہترین کھادیہ پدارتھ ہے، جو خالی پیٹ یا نہار منہ کھانے سے دل کی بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔
بیہی کا جوس تازگی پردان کرتا ہے اور پیاس کو کنٹرول کرتا ہے۔ بیہی کے بارے میں پشچمی دیشوں میں جو شودھ ہوئے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دل اور دماغ تتھا آماشے کو شکتی پردان کرتا ہے، خون بہنے کو بند کر دیتا ہے، دست میں لابھدایک ہے، سانس کو بحال کرتا ہے اور سینے سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज में ये बहुत अधिक लाभदायक है। इसका छिलका, फल और दाना सभी जड़ी बूटी में प्रयोग होते हैं। इसका छिलका विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होता है। इसका प्रयोग हर उम्र के लोग कर सकते हैं।
शोध से पता चलता है कि बीमारी अगर ज्यादा पुरानी है कि सूखे बेही का पाउडर बहुत अधिक लाभदायक होता है। नई बीमारी में शरबत या जोशंदा ज्यादा लाभदायक है। इसके जोशंदे के प्रयोग से दिल की उलझन को फायदा मिलता है। इसके पत्तों को कूटकर मरहम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है और जलने या कटने वाली जगह पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने साप्ताहिक कार्यक्रम सुना, सेहत का राज। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप हमें अवश्य सूचित कीजिएगा। और अब सभा के समापन से पूर्व मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान में आज नौरोज बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियां आगे भी जारी रहेंगी। रूस का ये कहना है कि उसके विरुद्ध प्रतिबंध न केवल उसे बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। चीन का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जिस पर 132 लोग सवार थे। हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, partstoday.com/hi। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098903506542। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। Thank you.